भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 60 पृष्ठ संख्या 550। मेरे पीछे बोलिए। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहाः परिष्यस्यमशोऽपि तत्। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य विशोऽपि तद्। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य विशोऽपि तद्। सद्दात बोलिए। स्वभाव जैन अपने स्वभाव से उत्पन्न कौन्तेय हे कुंती पुत्र निबद्धः बद्ध स्वेन तुम अपने कर्मणा कार्यकलापों से कर्तुम करने के लिए न नहीं इच्छसि इच्छा करते हो यत् जो मोहात् मोह से करिष्यसि करोगे अवश्य अनिच्छा से अपि तत् अपि भी तत् वह। मेरे पीछे अनुवाद बोलिए। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणी। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं स्वभाव जेन कौंते ने बद्धा स्वेन कर्मणा, कि हे कुंती पुत्र अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से तुम बंधे हुए हो। स्वभाव जेन, स्वभावज जा का मतलब जन्म लेने वाला, जो कर्म है जो स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है उससे तुम बंधे हुए हो। कर्तुम नेच्छन मोहा, जिस कर्म को तुम नहीं मोहित करना चाहते हो, है ना, करिष्यस्य विशोभित, उसको विवश होकर तुम करोगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, उस कर्म से तुम बंधे हुए हो, है ना, तो तुम नहीं करना चाहते हो। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, मेरे निर्देश अनुसार तुम कर्म नहीं करना चाहते हो, तो तुम विवश होके उस कर्म को करोगे। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, उन गुणों द्वारा जिन गुणों में वो स्थित है कर्म करने के लिए बाध्य होता है, है ना। तो यहाँ पर इशारा क्या है भगवान का अर्जुन से, क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय का जो स्वभाव स्वाभाविक कर्म है वो युद्ध करना है, है ना, युद्ध से भाग नहीं सकते। जहाँ युद्ध करने की चुनौती मिलती है, कहीं ललकारा जाता है युद्ध करने के लिए, तो क्षत्रिय का जो है स्वाभाविक कर्म क्या है, युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से वो भाग नहीं सकता है, तुरंत खून खोल जाएगा। क्या कहा, अच्छा चल युद्ध कर, दिखा तेरे पास कितनी शक्ति है। इस तरह से क्षत्रिय जो है ना फिर वो नहीं भाग सकता है, कहीं अगर युद्ध करने का उसे निमंत्रण मिले या उसको चुनौती मिले कोई ललकारे तो फिर जो ना वो रुक नहीं सकता है, है ना। तो ये गुण है क्षत्रिय। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है। हाँ, अब प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग, प्रत्येक व्यक्ति, बहुत अच्छा ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है। गुणों का विशेष संयोग है हर व्यक्ति के शरीर में। गुणों का संयोग मतलब वैसे तीन गुण है कि नहीं, तो अगर ऐसे देखा जाए भाई तीन गुण है तो फिर तो तीन ही प्रकार के व्यक्ति होंगे, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्वगुण है, तीन प्रकार के होंगे। लेकिन नहीं, तीन गुणों के संयोग कई प्रकार के हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि तीन गुण है, तीन रंग है,
तो तीन रंगों से अनेक रंग बनते हैं, है कि नहीं? और फिर कोई कोई परसेंट कोई रंग है 1% है, 2% है ना, 3%, 4% आपने लगाया, और दूसरे रंग को भी आपने 1%, 2%, 3%, फिर तीसरे रंग को भी 1%, 2%, 3%, तो इस तरह से आप कितने संयोग मिल जाएंगे, आप कितने प्रकार के रंग मिल जाएंगे आप गिनती नहीं कर सकते। हालांकि तीन ही रंग है कि नहीं? तीन रंग कौन से होते हैं? मूल रंग लाल, पीला और हरा। लाल, पीला और हरा तीन रंग है, उनसे कितने रंग बनते हैं, अनगिनत रंग बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से है ना, स्वभाव भी है ना, प्राणियों के अनगिनत प्रकार के स्वभाव हैं, लेकिन जबकि प्रकृति के तीन ही गुण हैं केवल, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और वैसे तीन गुणों से चार वर्ण जो बने हैं तो भी संयोग है। जो ब्राह्मण है उसमें सत्वगुण की प्रधानता है ना, वैसे तीनों गुण होते हैं, सत्वगुण की प्रधानता है ब्राह्मण में, और क्षत्रिय में सत्वगुण और रजोगुण की प्रधानता है, और वैश्य में रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है, और शूद्र में तमोगुण की प्रधानता है। तो तीन गुण से चार वर्ण बन गए, है कि नहीं? तो ये है विशेष संयोग है। क्षत्रिय में रजोगुण और सत्वगुण दोनों होता है, ब्राह्मण में सत्वगुण की ज्यादा प्रधानता है ना, सत्वगुण रजोगुण दोनों का मिश्रण है। इसलिए क्षत्रिय जो है ना धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है। अब युद्ध करना जो है ये रजोगुण का है कार्य, और धर्म की रक्षा करना सत्वगुण का है। तो सत्वगुण रजोगुण का मिश्रण है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करता है ना, वो सुरक्षा भी देता है, सत्वगुण है उसके अंदर। इसलिए जो निर्बल है, असहाय है, उसकी सुरक्षा करता है। क्षत्रिय का मतलब क्या है? छत का मतलब है घायल, छत माने घायल, और त्रि का मतलब है रक्षा करने वाला, प्राण। तो जो घायलों की रक्षा करे, यानी जो कमजोर है और महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण है और स्त्री है और बालक और गाय है, हाँ, और वृद्ध, इनकी रक्षा करता है क्षत्रिय। तो इसी प्रकार से वैश्य में क्या है? रजोगुण है और तमोगुण है, दोनों है। तो रजोगुण के कारण वो जो है लाभ का जो है ना बहुत ख्याल रखता है कि कैसे अधिक से अधिक व्यापार में लाभ निकाला जाए, है ना, तो रजोगुण है। और तमोगुण का भी प्रभाव है उसके अंदर, इसलिए वो दूसरों का जो है उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखता कि दूसरों की सुरक्षा होगी या नहीं होगी, अपने व्यापार में और अपने काम में ज्यादा लगा रहता है ना। तो ये जो है रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है, और जो शूद्र है उसमें तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए वो उसका मन व्यापार में नहीं लगता है कि ज्यादा लाभ उठाए व्यापार में। उसको जो है जो आदेश दिया जाए तो वो काम करता रहता है अपना, ज्यादा दिमाग लगाता नहीं कि किस काम में फायदा है किस काम में नुकसान है, उसको जो काम कहा जाए तो करता है, और उसको जो है जो भी दिया जाता है पारितोषिक या पारिश्रमिक तो उससे अपना जीवन निर्वाह करता है ना। तो इस तरह से चार वर्ण हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आगे, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। परमेश्वर के निर्देश के अनुसार अगर काम करेगा तो गौरवान्वित है। गौरवान्वित का मतलब यह है कि वे प्रकृति गुणों के द्वारा उसको काम नहीं करना पड़ता है, वो प्रकृति गुणों से ऊपर उठ जाता है ना, नहीं तो अवश्य होकर के करना पड़ेगा। जैसे कि तीसरे अध्याय का भी श्लोक संख्या कितना है? पांचवा, देखिए पांचवा है जिसमें भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक, हाँ पेज नंबर 114 है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते सा कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। इसमें अनुवाद है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो इसमें भी अवश्य कार्य कर रहे हैं, अवश्य कर्म सर्वा सभी लोग विवश होकर के कर्म कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही है, अवश्य ये शब्द आज के श्लोक में भी है, अवश्य पितर, और इसमें भी है अवश्य कर्म कार्य थे प्रकृति के गुणों का, मतलब अवश्य का मतलब ये है कि आप नहीं चाहते हो करना लेकिन आपको करना पड़ता है। तो भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं वो कराते हैं काम आपसे, और आप नहीं करना चाहते नहीं वो काम कराते हैं आपसे, तो ये ज्ञान है। और अज्ञान में क्या है, अज्ञान में कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद करता हूं, तो अहंकार है। अहंकार में कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं जबकि उससे कराया जाता है ना। जैसे जेल के अंदर जो है जो कैदी होता है तो उससे बेकार के काम कराए जाते हैं, चलो पत्थर सिर में रखो और यहां से लेकर के वहां तक चलो, कुछ भी उससे वो नहीं है, फायदा नहीं, उपयोग नहीं है, लेकिन उसको जो ना ऐसे भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, ये काम कर वो काम कर, है कि नहीं। और उससे अगर कहा जाए कि ओहो तुमको तो बहुत ज्यादा ये इस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो अगर उसके अंदर अहंकार है तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो खुद कर रहा हूं, है ना, वो नहीं मानता है कि मैं जो है विवश होकर कर रहा हूं। इसी प्रकार से जो जीव है भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन होकर कर्म कर रहा है, और अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें बनते, अहंकार के कारण अपने को सोचता है कि मैं कर रहा हूं, है ना, जबकि उससे कराया जाता है ना। तो आज के श्लोक में भगवान का जो कहना है वो यही है कि अगर आप भगवान के आदेश का पालन नहीं करोगे तो आपको भौतिक प्रकृति काम कराएगी। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहीं पर है कि कृष्ण भूलिया यही जीव भोग्य वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो कृष्ण को भूल करके कोई भी जीव अगर भोग्य वांछा करता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं कृष्ण के अधीन नहीं हूं, तो निकटस्थ, तो माया जो है ना निकटस्थ है, उसके निकट ही खड़ी है, और झपटिया धरे माने झपट करके उसको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। जैसे पुलिस, जैसे ही कोई व्यक्ति राजा के शासन को नहीं मानता है, राजा का आदेश नहीं पालन करता है, तो पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है, तो राजा के शासन में तो उसको रहना नहीं पड़ेगा, या तो खुशी खुशी रहे, राजा के शासन को स्वीकार करे, और नहीं तो उसको जबरदस्ती उसको शासन में रखा ही जाएगा, तो जेल के अंदर उसको बंद किया जाएगा। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि अगर मेरे आदेश के अनुसार तुम कर्म करने से मना कर रहे हो तो क्या होगा, विवश होकर के करोगे, है ना। अच्छा, अब एक घटना है श्रीमद् भागवत में, महाराज प्रियव्रत जो स्वयंभू मुनि के पुत्र थे, ये तभी बड़े थे, प्रियव्रत बड़े थे, उत्तान बाद छोटे थे, तो प्रियव्रत ने क्या किया कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत लिया, और नारद जी के मार्गदर्शन में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का उन्होंने व्रत लिया हुआ था। तो गंध मदन पर्वत पर वो नारद मुनि के जो है द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो स्वयंभू मुनि ने उस समय विचार किया कि ठीक है, दो पुत्र हैं उनके, तो अगर बड़ा पुत्र जो है अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाता है तो अभी ठीक है, छोटा पुत्र है तो वो जो है ना राज्य संभालेगा। तो स्वयंभू मुनि का जो राज्य शासन था वो उत्तानपाद ने संभाला, और उत्तानपाद के पुत्र फिर ध्रुव हुए, और है ना ध्रुव से फिर और भी वंश हुआ, इस तरह से काफी राजा हुए उसमें, और पृथ्वी का शासन करते रहे। और अंत में क्या हुआ कि प्रचेता जो हुए, 10 प्रचेता हुए इस वंश में, और 10 प्रचेताओं से फिर एक पुत्र हुआ दक्ष, है ना। और वो जो दक्ष थे तो उनके 10,000 पुत्र हुए जिनको नारद जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया तो फिर वंश आगे बढ़ा नहीं, वो तानपाद का वंश बढ़ा नहीं, बल्कि उसके बाद भी दक्षिण हजार पुत्र उत्पन्न किए तो नारद जी ने उनको भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया, है ना। तो फिर दक्ष के बाद फिर जो वंश है वो तानपाद का वो एक प्रकार से समाप्त ही हो गया, क्योंकि फिर उन्होंने देखा कि नारद जी जो है ना हमारे बच्चों को जो है गृहस्थ नहीं बनने देते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, दृष्टि को बढ़ाने के लिए कन्याओं को उत्पन्न करूंगा, तो 60 कन्याएं उत्पन्न की, है ना। तो उन कन्याओं से सृष्टि का तो बहुत विस्तार हुआ, लेकिन वो वंश तो आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि लड़की से तो फिर वंश चलता नहीं है कि नहीं। तो फिर स्वयं मनु को आवश्यकता पड़ी प्रीव्रत की, तो प्रीव्रत जो है गंधमादन पर्वत में नारद जी के द्वारा जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए थे उसको तुड़वाने के लिए स्वयं मनु ब्रह्मा जी को साथ में लेके आए। स्वयं मनु ने सोचा कि मैं पिता हूं, लेकिन हो सकता है पिता की बात ना माने, तो पिता की बात तो मानेगा, है ना। तो इस कारण से और ब्रह्मा जी में जो है ना विशेष जो है प्रभाव भी है, क्योंकि तो भगवान के साक्षात पुत्र हैं ब्रह्मा जी, इस कारण से भी ब्रह्मा जी जो है आए प्रीव्रत को समझाने के लिए, क्या कि राजा बने और गृहस्थ बने, है ना। तो जो शिक्षाएं हैं ब्रह्मा जी की, तो उससे हमें बहुत कुछ जो है ना इस श्लोक से संबंध प्राप्त होता है, इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूं। हाँ, ब्रह्मा जी जो है सत्यलोक से भूलोक में उतर रहे थे, तो नारद मुनि और राजकुमार प्रीव्रत और स्वयंभू मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब आदि पुरुष ब्रह्मा प्रीव्रत पर मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं आप ध्यान से सुनिए। हे प्रीव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनो, परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, समझे, परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, है ना। तो यहां पर क्या ईर्ष्या क्या है कि अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस कार्य को करो, जबकि आप जो है ना ज्यादा ऊंचे बनना चाहते हो, है कि नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आप कुछ नीच कार्य करो तो आपको करना चाहिए, परमेश्वर से ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं ये काम करने के लिए, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो ज्यादा ऊंचा बढ़ना चाहता हूँ, है ना। तो ये ईर्ष्या, तो एक प्रकार से ये ईर्ष्या है, क्यों, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रीव्रत राजा बने और गृहस्थ बने, और प्रीव्रत चाहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, लेकिन तो ये जो ना परमेश्वर से ईर्ष्या है। या अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि वो युद्ध करें, तो अर्जुन का ये विचार है कि भाई युद्ध जो है ना सामान्य रूप से अच्छा नहीं माना जाता है युद्ध कार्य करना, तो मैं ये जो हो खराब कार्य है घोर कर्म ये मैं क्यों करूं, है ना। तो ये ईर्ष्या है, नहीं आप कहते हैं कि मैं ये काम करूं लेकिन ये मैं काम नहीं करना चाहता, ये काम मुझे ठीक नहीं लगता, तो ये क्या हुआ ईर्ष्या, है कि नहीं। लेकिन अगर ईर्ष्या नहीं है परमेश्वर से, तो फिर परमेश्वर अगर चाहते हैं कि ये काम करो तो बस करना शुरू कर दिया, फिर कोई मतलब प्रश्न नहीं उठता कि मैं करना नहीं चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, मैं क्यों नहीं करना चाहता, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये काम करूं और मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि ईर्ष्या है, मेरा अहंकार है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रीव्रत, परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं, हम प्रयोग करके हम कितना भी विचार करें या निष्कर्ष निकालें कि ये काम अच्छा है काम बुरा है, है ना, हम कितना भी प्रयोग करें, लेकिन हम जो ना परमेश्वर को समझ नहीं सकते, जो परमेश्वर कहते हैं चाहते हैं जिस काम को कराना चाहते हैं, तो उसी काम से ही हमारा लाभ होने वाला है। तो हम प्रयोगात्मक परिमापों से हम नहीं निकाल सकते, निर्णय नहीं कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने कई प्रकार के जो है अपने अनुभूतियों से निश्चय किया कि युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध करना ठीक नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि युद्ध करना ठीक है, है कि नहीं? तो भगवान की जितनी दूर की दृष्टि है, जितनी व्यापक दृष्टि है, जिससे कि वो देख रहे हैं कि भाई ये काम अच्छा है, इस कार्य का परिणाम अच्छा है, तो वो हमारी दृष्टि नहीं हो सकती है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम सबों को जिसमें भगवान जिसमें शिव जी तुम्हारे पिता और महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें भी परमेश्वर की आज्ञा का ही पालन करना पड़ता है। मतलब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि नहीं, मैं सृष्टि का कार्य क्यों करूं, मैं भी जो है केवल तपस्या करूं, ध्यान करूं, है ना, क्या जरूरत है इस चक्कर में पड़ने की, है ना? लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे नारद जी हूं, या तुम्हारे पिता यानी स्वामी हूं, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 12 भक्त महाजनों में से 4 स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद, स्वयंभू मनु तथा शिव जी, ये प्रीव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। 4 उनके साथ अनेक साधु भी थे। ब्रह्मा जी ने प्रीव्रत को सर्वप्रथम ये बताना चाहा कि यद्यपि ये सभी महापुरुष अधिकारी हैं, किंतु वे इस श्लोक के वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तिमय श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। श्री भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी ना घटने वाले हैं। ईश्वर निषद में ईश्वर को अपाप विद्ध कहा गया है, जिससे यह सोचित होता है कि वे पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित किया गया है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर कोई भी पाप असर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो पृथ्वी से मूत्र को उड़ा देता है, किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता। श्री भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। इस तरह से यहाँ प्रभुपाद जी का कहना है कि अगर भगवान की इच्छा से अगर कोई भी गलत काम अगर हम करें, तो हम उस काम के जो दोष से हम मुक्त रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के आदेश से कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य मूत्र को सुखा देता है, लेकिन सूर्य तो अशुद्ध नहीं होता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं अहम तो आसर बापे वे मोक्ष मासुता, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा, तुम शोक मत करो। कोई भी पाप कर्म हो, अगर भगवान के आदेश से आप करते हैं, भगवान के शरण में आकर के करते हैं, तो भगवान पापों से छुड़ा देंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी प्रीव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए तो किसी तनक वश नहीं गए, वे तो श्री भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। निस्संदेह ब्रह्मा तथा अन्य अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वह श्री भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में 10-10 पुष्टि की गई है। एषाम सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयन्ति ते, जो मेरी सतत भक्ति और प्रीतिपूर्वक पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सके। अतः ब्रह्मा जी अपने स्तनक से प्रीव्रत के पास नहीं आए थे, इसलिए ही समझना चाहिए कि श्री भगवान ने उन्हें प्रीव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी। चूंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसीलिए उन्हें अप्रमेय कहा गया है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने प्रीव्रत को समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर सुने। तो सबसे पहली ब्रह्मा जी की शिक्षा है कि भगवान के प्रति ईर्ष्या मत करो। आगे यहां पर संकेत दिया गया है कि ना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी चाहे वह शिव जी, ब्रह्मा जी, मनु या महर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान है, किंतु उनमें श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। कौन से महाजन है जो बहुत शक्तिमान है? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, है ना। तो इस तरह से जो ना ये बहुत महान महान लोग हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान की आज्ञा अनुसार प्रीव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रीव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतः प्रीव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार करना श्रेयस्कर था। श्लोक है, निबोधता ते दृतम ब्रवी मासो ये तुम देव महर्ष प्रेमेयम वयम भवस्ते तथ एस महर्षि वहां सर्वे व्यवसाय से दिष्टम। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल से, वैदिक शिक्षा से, योग बल से, या शारीरिक बल से, या बुद्धि बल से टाल सकता है, न धर्म से भगवान की आज्ञा टाली जा सकती है, न अर्थ की शक्ति से पैसे के बल पर नहीं, न स्वयं या पराई सहायता से।